हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तब तक वहाँ खड़े हुए कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बना ली थी। गिरफ्तार करो, उमेश बोला। क्या? वेदांत ने कहा। वेदांत ने किसी को फोन करने की कोशिश की। बड़े लोगों को मैं छोड़ना नहीं हूँ। उमेश ने अपने आदमियों से वेदांत को गिरफ्तार करने को कह दिया और गाड़ी ड्राइवर को साइट पर लगाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी थी कि बिजनेसमैन वेदांत सहगल नशे के साथ पकड़ा गया और वहां पर उसने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी से बात की। पुलिस ने वेदांत को गिरफ्तार कर लिया था और वेदांत को भी समझने में देर नहीं लगी कि वो लड़की जो उसके पीछे गाड़ी तक आई थी वो क्यों आई थी। ये उसी का काम था। थोड़ी ही देर में राहुल और अंबर वकील के साथ उसके पास पहुंच चुके थे। अंबर जानती थी वेदांत कोई नशा नहीं करता, वो ड्रिंक जरूर ले लेता है और वो भी ज्यादा नहीं, इसीलिए वो गाड़ी में नशा कैसे आया उसके भी समझ से बाहर था। अंबर, मैं राहुल से बात करता हूँ, तुम घर जाओ। जैसे ही अंबर वेदांत से मिलने पहुँची, वेदांत ने कहा, और पूरी फैमिली में से किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई और भाभी से भी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए कह देना, उसने अंबर को अच्छे से समझाया था। वेदांत की सिक्स्थ सेंस कह रही थी कि कोई बड़ा रीजन है जो उसे फंसाया गया है, क्योंकि नशे की डोज इतनी कम मात्रा में थी कि वेदांत के लिए बाहर आना ज्यादा मुश्किल नहीं था। भाई, जब हम वेदांत को फंसा ही रहे थे तो कम से कम नशे की क्वांटिटी तो ज्यादा होनी चाहिए थी, उसे अच्छी तरह से फंसना चाहिए था। दोनों भाई टीवी पर चलती हुई वेदांत की न्यूज देख रहे थे। उसे देखते हुए अमन ने रवि से कहा, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि नशे की डोज कम है तो शायद वो इस पर ध्यान ना दे कि ये किसने किया। अगर नशे की मात्रा ज्यादा होती तो वो पता लगा लेता कि ये किसका काम है और फिर वो हमें भी नहीं छोड़ता। तो क्या अब वो कुछ नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता। वो सोचता होगा कि किसी से गाड़ी में गिर गया होगा, वो किसी के साथ गया होगा, तो वो इग्नोर कर सकता है इस बात को। कम से कम बाहर आने तक का इंतजार तो जरूर करेगा। उसे लगेगा कि पहले उसकी बेल हो जाए। अब दो दिन हैं हमारे पास, आज शनिवार है और कल संडे। वेदांत को बेल मंडे को होगी, तो कल का दिन है हमारे पास। तुम बीनू को बुलाओ, बस एक बार वो तुम्हारे पास आ जाए फिर वेदांत भी हमारे कब्जे में होगा, रवि अमन को समझा रहा था। एक लड़की काम मांगने आई थी, ये उसी का काम है। राहुल, तुम सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखो, उसे पहचान जाओगे, वेदांत ने उसे बताया। जैसे ही वेदांत गिरफ्तार हुआ वो तभी समझ गया था कि वो लड़की किस लिए आई, इसीलिए उसने सबसे पहले राहुल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। ठीक है सर, मैं सीसीटीवी फुटेज निकालता हूँ और पकड़ता हूँ उसे। बिल्कुल भी नहीं, उसका पीछा करो, क्योंकि ये जो हुआ है वो लड़की नहीं कर सकती, कोई और है जो उसे ये करवा रहा है। राहुल ने उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए थे, मगर रवि खन्ना और रमन खन्ना के लिए ये सुनहरी मौका था जो मुश्किल से आया था। मुझे वेदांत भाई के बारे में पता चला, बहुत बुरा हुआ, अमन ने बीनू से कहा। किसी ने झूठा फंसाया है भाई को, वो कहने लगी। तुम आ सकती हो मुझसे मिलने के लिए? तो आ जाओ, अमन ने कहा। नहीं, भाई ने मना किया है घर से बाहर जाने में, और ऐसे भी मेरा मन नहीं है कहीं आने जाने का। तो फिर तुम कल थोड़ी देर के लिए आ जाओ प्लीज, बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली में तो कोई नहीं है? किसकी बात कर रहे हो तुम? कोई एक ऐसा इंसान जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, हमारी शादी के लिए हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं मिलने आ जाऊंगी, बीनू कहने लगी। अमन और वेदांत का प्रोग्राम था कि अब वेदांत जहाँ नहीं है तो बीनू का फायदा उठाया जा सकता है, मगर वो लोग भूल गए थे कि वो ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। जब शीना की छानबीन की गई तो दो मिनट नहीं लगे उसका और उमेश का कनेक्शन पता करने में। राहुल वेदांत से मिलने पहुंचा। सही कहा था सर आपने, जिस पुलिस वालों ने आपको गिरफ्तार किया था ये उसी का काम है, उसी ने भेजा था शीना को। उमेश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, अब उमेश का पीछा करो, क्योंकि उमेश को भी किसी और ने मेरे पीछे लगाया है, कोई मेरा बिजनेस अराइवल है। और हाँ राहुल, उसके और उसकी फैमिली के अकाउंट्स चेक करो, उनसे पता चलेगा कि कोई बड़ी रकम ट्रांसफर तो नहीं हुई उसके अकाउंट में। उस अकाउंट का पीछा करो कि कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वेदांत ने कहा।